लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। बुद्धिमान पुत्र पिता को आनंद देता, किंतु मूर्ख पुत्र अपनी माता का तिरस्कार करता है। मूर्खता ना समझ को आनंद देती है, किंतु बुद्धिमान सन्मार्ग पर आगे बढ़ता है। अविचारित योजनाएं असफल होती हैं, परामर्शदाताओं की भारी संख्या उन्हें सिद्ध करती है। मुंह तोड़ जवाब देने में मनुष्य को आनंद आता है। यथोचित शब्द कितने अच्छे हैं। बुद्धिमान का मार्ग ऊपर जीवन की ओर ले जाता और उसे नीचे अधोलोक जाने से बचाता है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 15वें अध्याय के 20 से लेकर 24 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में सूक्ति ग्रंथ के लेखक ने एक बार फिर बुद्धिमान और मूर्ख के बीच अंतर दर्शाया है। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता के निर्देशों का पालन करता और दी गई शिक्षाओं पर ध्यान देता है। पिता को ऐसे पुत्र पर गर्व होता है। बुद्धिमान के विपरीत मूर्ख होता है। जो पिता से कुछ सीख नहीं पाता, वह अपनी माता का तिरस्कार करता है। माँ पुत्र की मदद को सदैव तत्पर रहती है, किंतु मूर्ख अपने अहंकार और अभिमान के कारण पथ भ्रष्ट हो जाता है और अपना जीवन यूं ही गंवा देता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अनवरत सन्मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। 22वें पद में लेखक अविचारित योजनाओं के प्रति सचेत करता है, क्योंकि ऐसी योजनाएं कभी भी सफल नहीं हो पाती। परामर्शदाताओं का भी यही कहना होता है। श्रोताओं, बिना सोच विचार के यदि हम कोई काम करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह काम अच्छा और सफल होगा। दूसरों की सलाह सुनने का फल यह भी हो सकता है कि आप सर्वोत्तम संभव निर्णय लें, क्योंकि अन्यों की सलाह से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। जबकि बिना सोच विचार के, बिना सलाह मशवरे के यदि हम कोई काम करते हैं तो केवल असफलता हमारे हाथ लगती है और हम निराशा में डूब जाते हैं। श्रोताओं, सच तो यह है कि यदि हम कुछ करने से पहले उसकी चर्चा न करें तो यह हमारी मूर्खता का परिचायक है। 23वें पद में लेखक कहता है, मुंह तोड़ जवाब देने में मनुष्य को आनंद आता है। यथोचित शब्द कानों को ही प्रिय नहीं लगते, बल्कि मन को भी आनंद देते हैं। मुंह तोड़ जवाब प्रसन्नता का स्रोत होता है। हम अपने विवेक पर प्रसन्न होते हैं। वस्तुतः मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होने का अर्थ है कि हम वाक्पटुता में माहिर हैं। तथापि लेखक याद दिलाता है कि वाक्पटुता ठीक है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यथोचित शब्दों का उच्चार। कब और किस स्थिति में क्या कहना, इसका ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए। आगे 24वें पद में लेखक कहता है, बुद्धिमान का मार्ग ऊपर जीवन की ओर ले जाता है और उसे नीचे अधोलोक जाने से बचाता है। बुद्धिमान व्यक्ति उस मार्ग को चुनते हैं जो जीवन का मार्ग है। वे मूर्खता पूर्वक पाप में जीवन नहीं बिताते और अधोलोक का रास्ता नहीं चुनते। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वरीय मार्ग की तलाश करते, वे झूठ और पाप से इनकार करते तथा सदैव सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहकर यथार्थ जीवन का आनंद उठाते हैं।
ईश्वर 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 ओम
ईश्वर 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 ओम
ईश्वर ईश्वर।
आगे 15वें अध्याय के 25वें, 26वें और 27वें पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक सत्य और न्याय की नींव पर घर निर्माण का परामर्श देते हुए कहता है, प्रभु घमंडियों का घर गिराता किंतु विधवा के खेत के सीमा पत्थर की रक्षा करता है। प्रभु को दुष्टों की योजनाओं से घृणा है किंतु प्रेममय वचन उसे प्रिय हैं। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। श्रोताओं, इन पदों का पूर्व भाग शब्दों के बाद विचारों की बात करता है, क्योंकि मनुष्यों के विचार ईश्वर के समक्ष उनके शब्द होते हैं और शब्दों का न्याय उन विचारों पर ही निर्भर रहता है। दुष्ट के विचार और शब्द उनके ही समान दुष्ट होते हैं। उनका लक्ष्य शरारत करना होता है, उनमें कोई न कोई बुरी प्रवृत्ति निहित होती है और ऐसी हरकतें प्रभु के लिए घृणित हैं। ईश्वर अंतर्यामी है, जो न केवल मनुष्य के दिल को जानते और परखते अपितु जो कुछ भी मनुष्य के मन में समाहित होता है उसे जान जाते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के विपरीत शुद्ध व्यक्तियों के विचार और शब्द उन्हीं की तरह शुद्ध, स्वच्छ और ईमानदार होते हैं, और ईमानदार होने के नाते उनके शब्द और विचार ईश्वर को प्रिय और सुग्राह्य होते हैं। शुद्ध हृदय से ईश्वर के नियमों का अनुपालन करने वाले तथा ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों की भक्ति उनके उत्थान का स्रोत बनती है। श्रद्धालु व्यक्तियों की प्रार्थना उसी प्रकार की होती है जैसे स्तोत्र ग्रंथ के 19वें भजन के 14वें और 15वें पदों में भजनकार याचना करता है, अपनी संतान को घमंड से बचाए रखने की कृपा कर, उसका मुझ पर अधिकार नहीं हो पाए, तब मैं निरअपराध होऊंगा और भारी पाप से निर्दोष। प्रभु, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगें। श्रोताओं, शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ईश्वर और पड़ोसी को प्रिय होता और अपने घर और परिवार वालों की रक्षा करता है। 27वें पद में लेखक आगाह करता है कि पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। जो लालची हैं, वे अपने परिवारों को मुसीबत में डालते हैं। लाभ के लिए व्यक्ति खुद को दुनिया का गुलाम बना लेता है। वह अपने आप को और अपने आसपास के सभी लोगों को तनाव में डाल देता है। व्यापार में हर नुकसान और निराशा पर वह झल्लाता है, परेशान हो जाता है और हर उस व्यक्ति से झगड़ा करता है जो उसके लाभ के रास्ते में आता है। उसकी कमाई पाप की कमाई होती है और इसीलिए वह अपने ही घर को परेशान करता है। वह घर वालों को, अपने बच्चों और परिजनों को एक बोझ और झुंझलाहट समझता है। ऐसा व्यक्ति जो लोभ लालच में पड़कर रिश्वत लेता और धन प्राप्त करने के अवैध तरीकों का उपयोग करता है, अपने बाद आने वालों के लिए केवल अभिशाप छोड़ जाता है। श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित हबक्कूक के ग्रंथ के दूसरे अध्याय में 5 अभिशापों को गिनाया गया है, जिनमें घमंड के साथ भ्रष्टाचार और घूस का भी जिक्र है। दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें पदों में हबक्कूक कहते हैं, धिक्कार है उसे जिसने लूट के धन से अपना घर भर लिया है और अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाए हैं। फिर कहते हैं, तू अनेक लोगों का विनाश करना चाहता था किंतु तूने अपने ही घर की प्रतिष्ठा नष्ट कर डाली और अपना ही विनाश कर डाला। श्रोताओं, घमंडी, लोभी और घूस लेने वाले व्यक्तियों के विपरीत वह व्यक्ति होता है जो घूस और भ्रष्टाचार से घृणा करता है, और ऐसे कामों के प्रलोभन में नहीं पड़ता जहां झूठ का सहारा लेना पड़े। ऐसा व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता और जो कुछ उसके पास है उसी में संतोष कर लेता है और इसीलिए प्रभु की सांत्वना और कृपा का पात्र बनता है। लेखक कहता है कि वह जीवित रहेगा, यानी कि उसका जीवन जीवन होगा, उसके जीवन में सुख और शांति होगी। सच ही तो है, वे जो उदार और धर्मी हैं, वे अपने परिवारों पर आशीर्वाद लाते हैं। वह जो उपहारों से घृणा करता है, जो न्याय को विकृत करने के लिए अपने हाथ में दी गई घूस का बहिष्कार करता है और धन प्राप्त करने के सभी पापमय अप्रत्यक्ष तरीकों से घृणा करता है और जब भी अवसर मिले भलाई के लिए तत्पर रहता है, वह जीवित रहेगा, उसके जीवन में सुख संतोष समृद्धि और प्रतिष्ठा विराजेगी।
ईश्वर 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 ओम
ईश्वर ईश्वर ईश्वर
ईश्वर ईश्वर ईश्वर ओम
ईश्वर ईश्वर ईश्वर
ईश्वर तुम हो जीवन दाता
ईश्वर तुम हो जीवन दाता
ईश्वर 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 ओम
ईश्वर 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 ओम।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने परमधम पीठ एवं फिलिस्तीन के बीच एक अंतर्धार्मिक संवाद दल के प्रतिभागियों से मुलाकात की तथा यरूशलेम में तीन बड़े एक ईश्वरवादी धर्मों के लिए सार्वभौमिक मूल्य की याद की। परमधम पीठ इस सप्ताह रोम में अंतर्धार्मिक वार्ता के लिए गठित विभाग एवं अंतर्धार्मिक संवाद के लिए फिलिस्तीनी आयोग के बीच संवाद हेतु संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पोप फ्रांसिस ने गुरुवार को वैटिकन में प्रतिभागियों से मुलाकात के दौरान इस कार्य समूह के प्रयासों को प्रोत्साहित किया। इस मुलाकात में संत पापा ने कार्डिनल जॉन लुइस तौरान की भी याद की, जिन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के धार्मिक मामलों के सलाहकार शेख महमूद अल हब्बास के साथ दल की शुरुआत की थी। संत पापा ने यरूशलेम के आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो कार्य दल की बैठक की विषय वस्तु थी। उन्होंने 2019 में मोरक्को के राजा के साथ की गई अपनी अपील दोहराई, जिसमें उन्होंने यरूशलेम को हर एक जन के लिए मानवता और विशेष रूप से तीन एक ईश्वरवादी धर्मों के अनुयायियों की आम विरासत, मुलाकात का स्थान और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का प्रतीक कहा था। संत पापा ने कहा, सुसमाचार बतलाता है कि यरूशलेम यीशु के जीवन की कई घटनाओं का स्थान है। पौत्र शहर में ही प्रभु मंदिर में चढ़ाए गए और जहां उन्होंने उपदेश दिया, चमत्कार किए और दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान द्वारा अपने मिशन को पूरा किया। यरूशलेम वही स्थान है जहां कलीसिया का जन्म हुआ, जब पौत्रात्मा शिष्यों को दिया गया और उन्हें दुनिया में उद्धार के संदेश की घोषणा के लिए भेजा गया। अतः यरूशलेम का एक सार्वभौमिक मूल्य है जिसको उसके नाम से ही जाना जा सकता है, जिसका अर्थ है शांति का शहर। संत पापा ने दुख भोग से पहले यीशु के उस कथन की याद की जिसको उन्होंने पौत्र शहर के सामने कहा था। जब वे नजदीक आए और शहर को देखा तो उस पर यह कहकर वे रो पड़े, भला होता कि तुम आज भी उन बातों को जानती जो शांति ला सकती है। संत पापा ने परमधम पीठ और फिलिस्तीन संयुक्त कार्य समूह के सदस्यों को प्रोत्साहन दिया कि वे यीशु के शब्दों एवं यरूशलेम के लिए उनके आंसुओं के महत्व पर ध्यान दें। उन्होंने कहा, कितने पुरुष और महिलाएं यहूदी ख्रिस्ते और मुस्लिम यरूशलेम के लिए रोए हैं और आज भी रोते हैं। उन्होंने कहा, हम भी जब यह मानते हैं कि पौत्र शहर एक माँ की तरह है जो अपने पीड़ित बच्चों के लिए शांति की कामना करती है, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंत में संत पापा ने कार्यदल से आग्रह किया कि वे करुणा के महत्व की याद करें जब वे यरूशलेम के लिए प्रेम पर चिंतन कर रहे हैं जो सभी के सम्मान एवं आदर के योग्य है। उन्होंने कामना की कि यरूशलेम के लिए ईश्वर की सहानुभूति किसी विचारधारा या राजनीतिक मार्ग रेखा से बढ़कर हमारा अपना बन जाए। संत पापा फ्रांसिस ने दान देने के आनंद पर प्रकाश डालते हुए चुपचाप दान करने का प्रोत्साहन दिया है। कात्रिक कलीसिया चालीसा काल में प्रार्थना और उपवास करने एवं दान देने का प्रोत्साहन देती है। संत पापा ने 9 मार्च के ट्वीट संदेश में लिखा, सुर्खियों से दूर रहकर दान देना दिल को शांति और आशा प्रदान करता है। यह हमारे लिए देने की सुंदरता को खोलता है जो प्राप्त करना बन जाता है, और यह हमारे लिए एक मूल्यवान रहस्य को प्रकट करता है कि हमारा हृदय पाने से अधिक देने में खुशी प्राप्त करता है। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को फ्रतेरना दोमु संघ के तत्वाधान में आयोजित सेमिनार कथेद्रा दिल अकुलियंसा अर्थात स्वागत का सिंहासन के प्रतिभागियों को संबोधित किया तथा समावेश एवं स्वागत की संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया ताकि सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। कथेद्रा दिल अकुलियंसा या स्वागत का सिंहासन एक सेमिनार है जिसका आयोजन फ्रतेरना दोमु संघ ने 6 से 10 मार्च को रोम से 30 किलोमीटर दूर साक्रोफानो शहर में किया है। सेमिनार में विभिन्न संस्कृति और धार्मिक पृष्ठभूमि के शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों का स्वागत किस तरह किया जाए उस पर प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने संघ के समर्पण की याद की जो सभी का स्वागत करने की शिक्षा दे रहा है। संत पापा ने विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती का हवाला देते हुए कहा कि प्रेम हमें सार्वभौमिक समन्वय की ओर ले जाता है। प्रेम दूसरों का स्वागत करने के लिए एक बड़ी क्षमता की मांग करता है और अंततः यह प्रेम की ही अभिव्यक्ति है जो हमें दूसरों के लिए बेहतर की तलाश करने को कहता है। संत पापा ने कहा कि यह वह स्थान है जहां ईश्वर परोपकार के कार्यों में विद्यमान है। बोको हराम के शिकार जनादा मार्कुस और मरिया जोसेफ ने नाइजीरिया और दुनिया भर में कई महिलाओं एवं लड़कियों की दर्दनाक वास्तविकता के बारे जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी कहानियां बतलाई। महिला दिवस एक अवसर है जब उन आवाजों को स्थान दिया जाता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता या भुला दिया जाता। विडम्बना यह है कि ये वे आवाजें हैं जिन्हें हमें सबसे ज्यादा सुनना चाहिए। उनकी कहानियां भयानक वास्तविकताओं के गवाह हैं। 8 मार्च को हमने जो आवाजें सुनी वे मरिया जोसेफ और जनादा मार्कुस की हैं और उन हजारों लड़कियों एवं महिलाओं की भी हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि वे बोको हराम के हिंसक पुरुषों द्वारा अपहरण एवं हिरासत की कहानियों को बहादुरी से बतलाती हैं। उन्होंने इस साक्ष्य को बुधवार को संत पापा फ्रांसिस के सामने लाया। मरिया जो 9 वर्षों तक बोको हराम के कायद में रही, मरियामू कहलाना पसंद करती हैं। वे 10 साल की उम्र में अपहरण कर ली गई थी और 19 साल की उम्र में पिछले अगस्त माह में रिहा हुई। जनादा मरियम से थोड़ी बड़ी है, वह 22 साल की है। हालांकि उसके कैद की अवधि कम रही लेकिन वह 4 बार अपहरण की शिकार हुई है। उससे भी बहुत अधिक पीड़ा सहना पड़ा है। मंगलवार को दोनों लड़कियों ने रोम में एड टू द चर्च इन नीड के मुख्यालय में पत्रकारों से मुलाकात की। वे दोनों एक साथ बैठकर बारी बारी से अपनी अपनी कहानियां बतलाई। मैदुगुरी के सदमा केंद्र के संचालक फादर जोसेफ के प्रोत्साहन पर जनादा ने बोलना शुरू किया। जनादा बोको हराम के 4 हमलों से बची हैं। उसका पूरा परिवार 2011 में भागने में कामयाब रहा जब आतंकवादियों ने बागा में उनके घर पर आग लगा दी थी। उसके 3 साल बाद दोबारा यही घटना घटी। मरिया की कहानी एक अलग प्रकार की कहानी है। 9 साल की उम्र में उसका अपहरण कर लिया गया था और वह 10 साल से अधिक समय तक बोको हराम के अधीन रही। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।